नमस्कार, जनसत्ता में सुनिए सुर्खियां, देश दुनिया की बड़ी खबरें। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार बचाव दल ने सोमवार को तारा एयरलाइंस के विमान के मलबे से 14 शव निकाले, जो रविवार को नेपाल के पहाड़ी मस्टैंग जिले में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें 4 भारतीयों सहित 22 लोग सवार थे और किसी के भी बचने की संभावना कम थी। टर्बोप्रॉप ट्विन ओटर 9N AET विमान में 3 सदस्यीय नेपाली चालक दल के अलावा 4 भारतीय नागरिक, 2 जर्मन और 13 नेपाली यात्री सवार थे। नेपाल सेना ने सोमवार को कहा कि रविवार सुबह दुर्घटनाग्रस्त हुए यात्री विमान के मलबे के टुकड़े उत्तर पश्चिमी नेपाल के मस्टैंग जिले के थसांग के सानो स्वरे भीर में 14,500 फीट की ऊंचाई पर पाए गए। खोज और बचाव दल ने विमान दुर्घटना स्थल का भौतिक रूप से पता लगा लिया है, विवरण का पालन किया जाएगा, नेपाल सेना के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल नारायण सिलवाल ने ट्विटर पर कहा। उन्होंने कहा कि एक पुलिस निरीक्षक और एक गाइड लेफ्टिनेंट मंगल श्रेष्ठ पहले ही घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। ब्रिगेडियर जनरल सिलवाल ने कहा, विभिन्न एजेंसियों के अन्य बचाव दल के सदस्य छोटे हेलीकॉप्टरों का उपयोग करके स्थलों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। साइट तक पहुंचने के हर संभव साधन पर विचार किया जा रहा है। एयरलाइन ने यात्रियों की सूची जारी की, जिसमें 4 भारतीयों की पहचान अशोक कुमार त्रिपाठी, उनकी पत्नी वैभवी बांदेकर और उनके बच्चों धनुष और ऋतिका के रूप में हुई। परिवार मुंबई के पास ठाणे शहर में स्थित था। भारतीय महिला टीम इस साल के अंत में दिसंबर में 5 मैचों की T20 श्रृंखला के लिए विश्व चैंपियंस ऑस्ट्रेलिया की मेजबानी करने के लिए तैयार है। श्रृंखला की तारीख और स्थान, जिसकी घोषणा क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने सोमवार को सीजन के लिए अपने पुरुषों और महिलाओं के कार्यक्रम के हिस्से के रूप में की थी। भारतीय महिला टीम, जो आखिरी बार मार्च में एक दिवसीय विश्व कप में दिखाई दी थी, अगली बार जुलाई में बर्मिंघम में राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लेगी, जिसके बाद वो सितंबर में 3 एक दिवसीय और इतने ही T20 वाली सफ़ेद गेंद की श्रृंखला में मेज़बान इंग्लैंड से भिड़ेगी। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के CEO ने कहा, ये टीम के लिए रोमांचक 8 महीने की शुरुआत है, जिसमें भारत का दौरा, पाकिस्तान के खिलाफ घरेलू श्रृंखला 100 में खेलने का अवसर और हमारे अपने विस्तारित घरेलू सत्र शामिल हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलियाई पुरुष टीम सितंबर में 3 मैचों की T20 श्रृंखला के लिए भारत का दौरा भी करेगी, जैसा कि पहले बताया गया था। यूक्रेन के लुहानस्क क्षेत्र के RPT गवर्नर ने बताया कि सिवेरियो डोनेस्टक के यूक्रेनी शहर में लड़ाई बहुत भयंकर है, स्थिति बहुत कठिन है। लुहानस्क गवर्नर यूक्रेन के लुहानस्क क्षेत्र के RPT गवर्नर का कहना है कि इस क्षेत्र में लाखों लोगों को पानी की आपूर्ति के बिना छोड़ दिया गया है। उन्होंने बताया है कि सिवेरियो डोनेस्टक में कोई गैस या पानी नहीं है और इन सेवाओं को बहाल करने की कोई संभावना नहीं है। यूक्रेन के लुहानस्क क्षेत्र के RPT गवर्नर का कहना है कि हम अब भी 2 शहरों को दैनिक आधार पर मानवीय सहायता प्रदान करने में सक्षम हैं। चीन में दुनिया की आबादी का 6ठा हिस्सा है, फिर भी 4 असाधारण दशकों के बाद, जिसमें चीन की आबादी 660 मिलियन से बढ़कर 1.4 बिलियन हो गई है, इस वर्ष 1959 से 1960 के महान अकाल के बाद पहली बार इसकी आबादी कम होने की राह पर है। चीन के राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार चीन की जनसंख्या 2021 में 1.4122 बिलियन से बढ़कर केवल 1.41260 बिलियन हो गई। केवल 48 लाख की रिकॉर्ड कम वृद्धि, एक दशक पहले 8 मिलियन या उससे अधिक की वार्षिक वृद्धि का एकमात्र अंश, जबकि सख्त एंटी COVID उपायों के कारण बच्चे पैदा करने की अनिच्छा ने जन्म में मंदी में योगदान दिया हो सकता है। 1980 के दशक के अंत में चीन की कुल प्रजनन दर 2.6 थी, ये 1994 से 1.6 और 1.7 के बीच रहा है और 2020 में 1.3 और 2021 में केवल 1.15 पर फिसल गया। तुलनात्मक रूप से ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल प्रजनन दर प्रति महिला 1.6 जन्म है। जापान में वृद्धावस्था में ये 1.3 है। ये 2016 में चीन द्वारा अपनी एक बाल नीति को छोड़ने और पिछले साल कर और अन्य प्रोत्साहनों द्वारा समर्थित 3 बाल नीति शुरू करने के बावजूद हुआ है। सिद्धांत इस बारे में भिन्न है कि चीनी महिलाएं राज्य के प्रोत्साहन के सामने बच्चे पैदा करने के लिए अनिच्छुक क्यों रहती हैं। एक में छोटे परिवारों का अभ्यस्त होना शामिल है, दूसरे में जीवन यापन की बढ़ती लागत शामिल है, तीसरे में शादी की उम्र बढ़ाना शामिल है जो जन्म में देरी करता है और बच्चे पैदा करने की इच्छा को कम करता है। फ्रांसीसी विदेश मामलों के मंत्रालय ने कहा कि फ्रांस के विदेश मामलों के मंत्री कैथरीन कोलोना यूक्रेन के साथ फ्रांस की एकजुटता व्यक्त करने और देश के लिए और अधिक समर्थन की पेशकश करने के लिए सोमवार को कीव में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की से मुलाकात करेंगे। ये यात्रा कुछ राजनयिकों और राजनीतिक विश्लेषकों की आलोचना के बीच आती है कि फ्रांस रूस के साथ अपनी लड़ाई में यूक्रेन का समर्थन करने के लिए पर्याप्त मदद नहीं कर रहा है। यूरोपीय संघ के नेता सोमवार को यूक्रेन के लिए समर्थन दोहराने के लिए भी मिलेंगे क्योंकि रूसी सेना ने दक्षिण पूर्वी डोनबास क्षेत्र के एक प्रमुख शहर सेवियेरो डोनेस्टक पर कब्जा करने के लिए हमले तेज कर दिए हैं, जिस पर मॉस्को ने पूर्ण नियंत्रण लेने को प्राथमिकता दी है। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आएं जनसत्ता.com पर। नमस्कार।